से हम देख सकते हैं कि इब्राहिम को खुदा ने किस तरह से बियाबान में जाने के लिए कहा। सबसे पहले जो हुक्म उसको मिला कि तू अपने नातेदारों और रिश्तेदारों से बाहर निकला, और ये कोई आसान तजुर्बा नहीं था, लेकिन उसने खुदा की फर्माबरदारी की और उसने अपने रिश्तेदारों को, नातेदारों को सब कुछ छोड़ा और वो बियाबान में चला गया। और वहाँ पर खुदा ने उसके साथ जो वादा किया, हम देखते हैं कि इब्राहिम को इसहाक, जो खुदा के वादे का फर्जंद था, उसके मुताबिक खुदा ने उसको कहा कि इसकी कुर्बानी तो मेरे हजूर दे दे। अब जाहिर ये कोई आसान तजुर्बा नहीं था इब्राहिम के लिए कि, और सारा के लिए, बुढ़ापे में उनको बेटा मिला और अभी वो भी कुर्बानी के लिए बलिदान किया जा रहा है, लेकिन ये खुदा का इंतज़ाम था, लिहाजा उसने खुदा का हुक्म माना। मैं ज़्यादा गहराई में नहीं जाता। और उसके आगे हम जाके देखते हैं कि ये वादे खुदा ने इसहाक से किए, उसको बेटे दिए और साऊ और याकूब, तो याकूब को भी बज़ाहिर खुदा ने घर से दूर जाए भगाया ताकि वो अपने अजीज़ों से दूर चला जाए, और वहाँ पर खुदा ने उसको वादे दिए। फिर उसके बेटों में से हम यूसुफ को देखते हैं कि यूसुफ को बज़ाहिर भाइयों ने बेच दिया और वो मिस्र में चला गया, लेकिन वहीं मिस्र में उसको खुदा ने तख्त का वारस होने के लिए चुन लिया, लेकिन वहीं से तख्त को छोड़कर उसने बियाबानी सफ़र गुजराना, और वो बियाबान में चला गया था क्योंकि अपने लोगों के साथ वो बेइंसाफी बर्दाश्त ना कर सका। इसी तरह से कुछ मेरी ज़िंदगी के बेशुमार तजुर्बे हैं जिनको मैं पहले से दोहरा चुका हूँ, लेकिन कुछ अब आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि ऐसा लगता है कि जब मुझे अटॉर्नी ऑफिस में मुकर्रर किया गया, क्योंकि जॉब से तो मैं रिटायर था, 2003 में रिटायर हो गया था 65 साल की उम्र में, और अब 2007 में डॉक्टर पीटर जे डेविड, जो कि इंग्लैंड में रहते हैं और पाकिस्तानी हैं, उनको चर्च ऑफ स्कॉटलैंड ने अटॉर्नी ऑफिस मुकर्रर कर दिया, और उनको ज़रूरत थी एक एडमिनिस्ट्रेटर की जो ऑफिस को संभाल सके, क्योंकि जो दो से पहले उसने मुकर्रर किए वो ठहर ना सके और वो भी भाग गए। और इसके बाद जब मुझे ये ऑफिस सियालकोट डायसिस में मिला, जो कि मरे कॉलेज हाउस कहलाता था उस वक़्त, वहाँ पर ये ऑफिस खोला गया, और मैंने भी खुदा की हजूरी में इसको ऐसे सर अंजाम दिया कि मैंने कोशिश की कि कितनी ज़मीनें हैं जो चर्च की हैं, चर्च ऑफ स्कॉटलैंड की, जो नाजायज़ लोगों के कब्ज़े में चली गई हैं, और बहुत से जो मुसलमान थे वो उन ज़मीनों पर काबज़ हो गए। और खसूसी बात जो वज़ीराबाद में एक वैरो के जगह है नज़दीक, और वहाँ जो मिशन हाउस है वो भी वैरो के नज़दीक है, वहाँ पर की जो ज़मीनें थीं वो काश्तकारी के लिए इस्तेमाल होती थी, और उन पर चीमें जो थे वैरों के उन्होंने कब्ज़ा कर लिया। तो जब मैंने पूरे तौर पर सारे चर्च ऑफ स्कॉटलैंड की प्रॉपर्टी जो डायसिस की दूध में थी उसको इस्तेमाल करने में, उसको वापस लेने में जदोजहद की और फाइल तैयार की, कोशिश की कि पूरा रिकॉर्ड तहसीलदार से मिलकर और रिटायर्ड पटवारी से मिलकर उसको तैयार किया जाए, तो वो हो गया। और जब देखा गया कि ये मुकम्मल हो गया है तो मुझे भी धमकियां शुरू हो गई, थ्रेट्स आनी शुरू हो गई कि बेहतर है तुम्हारे लिए तुम इस काम को छोड़ दो। चुनाचे मुझे ये भी कहा गया कि ये तेरे बाप का तो नहीं है ये प्रॉपर्टी जायदाद। तो मैंने कहा आपने तो मुझे अजीब तजब्जब में डाल दिया, ये ना सिर्फ मेरे बाप की बल्कि मेरी तो माँ की भी है, क्योंकि ये चर्च ऑफ स्कॉटलैंड की प्रॉपर्टी है और चर्च ऑफ स्कॉटलैंड मेरी मारा मदर चर्च है, तो अगर कलीसिया किसी की माँ नहीं तो खुदा उसका बाप कैसे हो सकता है। तो मैंने सर तोड़ कर सारी कोशिश की और जब केस मुकम्मल हो गया तो मेरे खिलाफ एक साजिश तैयार की गई और उन्हीं टीमों ने पेशतर के मुझे अरेस्ट करवाया जाए। 3 महीने कबल मेरे लिए सियालकोट कन्वेंशन के दौरान ये मुझे इतला भी दी गई कि आपके खिलाफ केस हो चुका है, लेकिन मैंने उसकी परवाह नहीं की। और नतीजा क्या हुआ कि जनवरी में जाके ये मुझे अरेस्ट कर लिया गया जनवरी 2008 में। और ये मुझे पुलिस ने बताया कि आप तो 3 माह से फरार हैं। मैंने कहा मैं तो कहीं नहीं गया, मैं तो यहीं होता था और ऑफिस में भी जाता हूँ सियालकोट में। उन्होंने कहा नहीं, हम आपको ढूंढ रहे हैं। लिहाजा वो चूँकि शाम का वक़्त था, मिशन कंपाउंड में मेरी रिहाइश थी और मुझे वहाँ से ये किया गया, अरेस्ट किया गया और फिर गुजरांवाले में ले गए, क्योंकि ना तो मेरे ख़िलाफ़ गुजरात में केस बनाया गया और ना सियालकोट में, यहाँ मेरी वाकफियत भी थी और लोग मुझे जानते थे, लेकिन सेटेलाइट टाउन गुजरांवाला में मुझे हवालात में बंद कर दिया गया। तकरीबन 8 दिन के बाद, हवालात की हवा खाने के बाद, मुझे SHO ने अपने ऑफिस में बुलाया और उन्होंने कहा कि पादरी साहब, हम अफसोस करते हैं, हमें पता है कि आपके ख़िलाफ़ नाजायज़ केस है, लेकिन हम मजबूर हैं क्योंकि पेपर जो हैं उनका ये हम ज़ाया नहीं कर सकते। उनका रिकॉर्ड ये बताता है कि आपको 3 महीने पहले वारंट आपके जारी हुए थे, इसलिए अब हम आपकी ये मदद कर सकते हैं कि आप अपने किसी अजीज़ को बुलाएं तो ताकि आपको बेल मिल सके। तो ये बड़ा अजीब बात था क्योंकि बेटा भी स्कॉटलैंड में था और मेरे लिए बड़ा मुश्किल था कि मैं किसको ये बात बताऊं। लिहाजा जब मेरे दामाद को इस बात का पता चला, बन्नू में वो उस वक़्त स्कूल ऑफ प्रिंसिपल थे जिनको उन्होंने कॉलेज भी किया, तो उनके पास कुछ जब इतला मिली तो उन्होंने वहाँ से आके SHO को मिले और SHO की जो उनका प्रोग्राम होता है पैसे लेना और फिर उनको हदायत करना, तो उनको बताया कि हम आपकी मदद कर सकते हैं, आप बेल रेस्ट करवा सकते हैं और आप इनको ले के जा सकते हैं। और तो ये देखें कि वहाँ पर भी एक जो डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल था, वो इत्तफाक़ की बात थी, उस वक़्त क्रिश्चियन था, इकबाल उसका नाम था, इकबाल मसीह। तो खुदा का शुक्र है कि उसने मेरी बड़ी मदद की, मुझे अपने घर से उसने अपना अच्छा बिस्तर ला के दिया, बड़ी मेरी खातिर खताजी की, क्योंकि जो मेरे वकील थे उन्होंने उनको बताया कि ये मेरे दामाद हैं, क्योंकि उनका निकाह, वो भी क्रिश्चियन थे गुजरांवाला में, उनका निकाह मैंने किया हुआ था। तो इस सबब से, इस लिहाज से मुझे जब बेल मिल गई तो मुझे डिप्टी साहब ने, जो इकबाल मसीह थे, उन्होंने कहा कि मैं खुद आपको आपके दामाद के हवाले करके आऊँगा, क्योंकि हो सकता है कई और केस आपके खिलाफ बनाए गए हों, क्योंकि ये सारी साजिशें आपके खिलाफ हो रही हैं। तो लिहाजा खुदा का शुक्र करता हूँ कि 3 महीने केस लड़ने के बाद जब मेरा केस सेटल हो गया, क्योंकि वो जो मुखालिफ थे वो पेश ही नहीं होते थे, और शहबाज़ अहमद चीमा जिसने गुजरांवाले में मेरे खिलाफ़ कार का चोरी का पर्चा बनाया था वो पेश नहीं होते थे, लिहाजा ये मुझे यक तरफा फैसला मिला। लेकिन मैं खुदा का शुक्र करता हूँ कि उसके बाद मेरे बेटे ने मुझे बड़ी तद्दी से, सख्ती से ये कलवा भेजा किसी एक मिशनरी की मार्फत कि जितनी जल्दी हो सके आप अपने खानदान के पास आएँ, ख़ानदान का फिक्र करें, चर्च की ज़मीन वहीं पर है और वहीं पर रहेगी। लिहाजा मैंने माना और मैं और मेरी बीवी हम स्कॉटलैंड में आ गए और अब हम खुदा का शुक्र करते हैं कि यहाँ पर पेंशन भी है, यहाँ पर सारी फैसिलिटीज़ भी हैं, मेडिकल फ्री है और हर तरह से बसेस की सफ़र जो है वो फ्री है, तो कोई ऐसी बात नहीं है जिसके लिए यहाँ कोई मुश्किल हो। घर भी है, सब कुछ अलग दिया हुआ है खुदा ने गवर्नमेंट की मार्फत, तो मैं खुदा का शुक्र करता हूँ। तो ये वो मेरे तजर्बात थे जिसको मैं शामिल करना चाहता हूँ कि आप जानें कि खुदा जब सचमुच, ये रूमियों 8:28 पहले भी मैंने दोहराई थी कि रूमियों 8:28 है, खुदा से मोहब्बत रखने वालों के लिए सब चीज़ें मिलकर भलाई पैदा करती हैं, और ये बिल्कुल सच है मेरे लिए। हर कदम पर, हर बात में खुदा ने भलाई पैदा की, और मैं अब किसी को मुजरम नहीं ठहराता, क्योंकि मैं समझता हूँ कि इल्ज़ाम नहीं देता, बल्कि मैं समझता हूँ कि ये खुदा ने मेरे लिए किया सारा कुछ, ताकि जिस तरह पहले मैंने जिक्र किया कि मेरा ऑपरेशन होना था तो खुदा ने मुझे जबरन रिटायर करवा दिया, ये भी मैं समझता हूँ ये खुदा का इंतज़ाम था, मैं किसी को इसके लिए भी जिम्मेदार नहीं ठहराता। और फिर जब ये आराम की बात थी तो मेरे बच्चे यहाँ पर थे, तो खुदा का शुक्र है कि अब मैं यहाँ पर इत्मीनान से खुदा की खिदमत भी करता हूँ, रेडियो पर भी काम जारी है, और इस तरह से जैसे प्रोफेसर साहब मदद करते हैं, ये इंटरनेट पे भी अब बात चली जा रही है, तो खुदा का शुक्र है। चर्चेज में भी, और जो लोकल कांग्रीगेशन है स्कॉटिश एशियन क्रिश्चियन फेलोशिप, उसमें भी खुदा इस्तेमाल करता है, इंडियन और पाकिस्तानी घरों में लोग बुलाते हैं विज़िट के लिए भी, तो खुदावंद की तारीफ़ हो कि वो अपने काम के लिए अजीब तरीके से यहाँ पर ले आया है। हालेलुया, खुदावंद का शुक्र हो कि वो अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर सकता है। आमीन।